पृष्ठ संख्या 399, अध्याय 15, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, वेलफेयर ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसीस। शब्द पिछड़े वर्गों को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, व्यनुसूचित जातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन जातियों ने अमानवीय जाति प्रथा प्रणाली के अधीन अलाभान्वित स्थिति में परिश्रम किया है, जिसके कारण इन्हें अनेक सामाजिक एवं आर्थिक अयोग्यताओं का सामना करना पड़ा है। जबकि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की तत्संबंधी सूची संशोधन आदेश 1956 के अंतर्गत संशोधन सूचियों में पहचान कर रखी है एवं व्यनुसूचित जातियों को आपराधिक जनजाति कानून 1924 में परिभाषित है। अन्य पिछड़े वर्गों की अस्पष्ट परिभाषा अभी तक नहीं हो पाई है। संविधान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संरक्षण एवं सुरक्षा की व्यवस्था करता है, ताकि उनके शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का उन्नत किया जा सके एवं उन विशिष्ट अयोग्यताओं को जिनके वह अभी तक अधीन थे दूर किया जा सके। पिछड़े वर्गों के बारे में संवैधानिक व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग बैकवर्ड क्लासेस। प्रासंगिक कानूनी व्यवस्थाएं भारतीय संविधान के भाग 16 में वर्णित की गई हैं, जिसका शीर्षक है कुछ वर्गों के लिए विशेष व्यवस्थाएं। इन व्यवस्थाओं से स्पष्ट है कि सन 1950 में संविधान निर्माता केवल निम्नांकित वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता समझते थे। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, एंग्लो इंडियन समुदाय तथा सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग। उपरोक्त तीन विशेष श्रेणियों के लिए संविधान निर्माताओं ने विभिन्न प्रकार की एवं विभिन्न स्तर की रियायतें प्रदान की। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभाओं एवं लोकसभा में स्थान आरक्षित किए गए। यह विचारधारा थी कि आरक्षण केवल 10 वर्ष तक रहेगा, परंतु संविधान संशोधनों द्वारा इस अवधि को बढ़ाया जाता रहा है और 40 वर्ष बाद भी यह आरक्षण विद्यमान है। एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए लोकसभा में 2 स्थानों को आरक्षित किया गया, जिनके लिए राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनीत करता था। ऐसी व्यवस्था राज्य विधानसभाओं के लिए भी है। भाग 16 में शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विधानमंडलों में किसी आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। भाग 16 में विशेष व्यवस्थाओं की दूसरी श्रेणी केंद्रीय एवं राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को सरकारी पदों पर नियुक्ति से संबंधित है। पृष्ठ संख्या 400, धारा 336 में रेलवे सीमा शुल्क डाक तार सेवाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण उसी आधार पर जारी रहेगा जैसा 15 अगस्त 1947 से पूर्व था, परंतु यह आरक्षण केवल 2 वर्ष रहना था तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद इसमें 10% की कटौती की जाती थी, ताकि 1990 के बाद उसके लिए कोई आरक्षण न रहे। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान की धारा 335 में अंकित किया गया है कि प्रशासन में दक्षता को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के दावों पर केंद्रीय अथवा राज्य सरकार में नियुक्ति करते समय विचार किया जाएगा। इसके शब्दों में इन जातियों के लिए कोई निर्धारित कोटा नहीं था, जैसा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए था। दूसरे, इसके लिए 2 वर्ष अथवा 10 वर्ष में ऐसी कोई अवधि नहीं थी जिसके बाद आरक्षण समाप्त हो जाएगा। तीसरे, एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण प्रशासन की दक्षता से संबंधित नहीं था, जबकि अनुसूचित जनजातियों जातियों के बारे में यह शर्त जोड़ी गई थी। अंतिम, जबकि एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य मेरिट के आधार पर भी प्रतियोगी बन सकते थे एवं कोटा का भी उपयोग कर सकते थे, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के बारे में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। एंग्लो इंडियन समुदाय को एक अन्य सुविधा शैक्षिक सहायता अनुदान उपलब्ध थी, परंतु अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य शैक्षिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए ऐसी कोई सुविधा संविधान के भाग 16 में सम्मिलित नहीं है। जहां तक शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का प्रश्न है, उसके बारे में भाग 16 की धारा 340 में निम्नलिखित व्यवस्था है। 340, पिछड़े वर्गों की दशाओं की जांच करने हेतु आयोग की नियुक्ति। नंबर एक, राष्ट्रपति भारतीय भूभाग के अंदर सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की दशाओं तथा उन कठिनाइयों जिनमें वह परिश्रम करते हैं एवं ऐसी कठिनाइयों को दूर करने एवं उनकी दशा को सुधारने हेतु केंद्र अथवा किसी राज्य द्वारा लिए जाने वाले पत्रों के बारे में तथा तदर्थ केंद्र अथवा राज्य द्वारा दिए जाने वाले अनुदान एवं ऐसी अनुदान की शर्तों के बारे में सिफारिशें देने के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा, जिसमें ऐसा व्यक्ति सदस्य होंगे जिनको वह ठीक समझे। ऐसे आयोग की नियुक्ति आदेश में आयोग द्वारा अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का भी वर्णन होगा। नंबर दो, ऐसा नियुक्त आयोग उनको भेजे गए मामलों की जांच करेगा एवं राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें उनके द्वारा मालूम किए गए तथ्यों तथा उनकी सिफारिशों जो वह उचित समझे का वर्णन होगा। नंबर तीन, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट के प्रति उस पर की गई कार्यवाही भारतीय संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करेगा। भारत के राष्ट्रपति के तदनुसार संविधान की धारा 340 के अधीन कार्य करते हुए काका साहेब कालेकर की अध्यक्षता में जनवरी 1953 में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों से अलग एक सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने, मापदंडों को निर्धारित करने एवं ऐसे निर्धारित मापदंडों के आधार पर ऐसे वर्गों की सूचियां तैयार करने के लिए एक पिछड़े वर्ग के आयोग की नियुक्ति की। पृष्ठ संख्या 401, मार्च 1955 में प्रस्तुत आयोग की रिपोर्ट ने सदस्यों में पर्याप्त मतभेद को प्रकट किया, परंतु बहुजन ने सिफारिश की कि अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान का सर्वोत्तम मापदंड हिंदू समाज की परंपरीय जाति प्रधान संरचना में उनकी निम्न सामाजिक स्थिति होनी चाहिए एवं तदनुसार 2700 जातियों की एक सूची तैयार की तथा अनुमानित किया कि इनमें से 930 जातियां ही देश की जनसंख्या का लगभग एक तिहाई भाग होगा। आयोग के विचारानुसार महिलाएं भी पिछड़ा वर्ग हैं। सितंबर 1953 एवं 1956 में आयोग की रिपोर्ट को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार ने कहा कि यदि देश की जनसंख्या का बहुभाग पिछड़े वर्गों की श्रेणी में समझा जाता है तो ऐसे वर्ग को अलग गणना को किसी लाभकारी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था, किसी भी वर्ग को पिछड़ा कहना मौलिक रूप से गलत है। यदि वह वास्तव में ऐसा है भी, जबकि देश में 90% व्यक्ति पिछड़े हुए एवं निर्धन हैं, अतएव अस्पष्ट है कि जिन वर्गों को पिछड़ा हुआ वर्गीकृत किया जाता है उन्हें सामान्य जनसंख्या से अधिक पिछड़ा हुआ होना चाहिए। सरकार ने आयोग के अध्यक्ष के इस विचार से सहमति प्रकट की कि जात के पिछड़ेपन का मापदंड बनाना ठीक नहीं होगा एवं जात के आधार पर प्रस्तावित उपचार स्वयं पिछड़ेपन की बुराई से अधिक भयानक होंगे। रिपोर्ट को पंडित नेहरू द्वारा ठीक ही अलमारी में बंद करके रख दिया गया, क्योंकि ऐसा उपागम समाज के बारे में उपखंडों में विभक्त कर देगा। सरकार ने कालेकर आयोग को विवादग्रस्त सिफारिशों को अस्वीकृत करते हुए अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने हेतु किसी कार्यशील एवं वस्तुपरक मापदंड की खोज करने हेतु और अध्ययन करने का निर्णय किया। जनगणना के उप रजिस्ट्रार जनरल को ऐसे व्यवसायों जिन्हें पिछड़ा कहा जाता है का मार्गदर्शी अध्ययन करने के लिए कहा गया, परंतु उसके प्रयास का कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकला, क्योंकि उसने ऐसे व्यवसायों जिनके कर्ताओं को सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा समझा सके की पूर्ण एवं अस्पष्ट सूची तैयार करने कार्य को असंभव पाया। सरकार ने इस विषय पर राज्य सरकारों के विचार मांगे। एक राज्य ने पिछड़े वर्गों के स्थान पर पिछड़े क्षेत्रों के विचार को प्रतिपादित किया। योजना आयोग राज्य ने पिछड़े वर्गों के स्थान पर पिछड़े क्षेत्रों के विचार को इस विचारणा के बाद स्वीकार किया। कुछ राज्यों ने आर्थिक पिछड़ेपन को तथा अन्य ने जाति को मापदंड बनाने का पक्ष लिया। केंद्रीय सरकार के लिए यह कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं था। वह अखिल भारतीय स्तर पर सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़े वर्गों की कोई सूची तैयार करे, और यदि ऐसी कोई सूची तैयार कर भी ली जाती है तो राज्य सरकारों को प्रयास से वर्तमान विभाजक प्रवृत्तियों को और अधिक बढ़ावा देने के लिए जातिविहीन एवं श्रेणीहीन समाज की स्थापना के राष्ट्रीय उद्देश्य के विपरीत होना होगा। अतएव भारत सरकार ने 1961 में राज्य सरकारों को सूचित कर दिया कि उन्होंने ध्यानपूर्वक विचारोपरांत पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के अतिरिक्त कोई अखिल भारतीय सूची तैयार न करने का निर्णय लिया, एवं जबकि राज्य सरकारों को पिछड़ेपन की परिभाषा करने हेतु अपना अपना मापदंड छांटने की स्वतंत्रता है। जाति को आधार न बनाकर आर्थिक मापदंड अपनाना अधिक श्रेयकर होगा। पृष्ठ संख्या 402। राज्यों में अन्य पिछड़े वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लासेस इन द स्टेट्स। पिछड़े वर्गों के बारे में स्थिति राज्य दर राज्य भिन्न भिन्न है। एक ओर मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन द्वीप, लक्षद्वीप एवं मिजोरम ने अन्य पिछड़े वर्गों को न तो मान्यता दी है और न ही कोई सूची तैयार की है। उड़ीसा एवं दिल्ली के एक बार जाति के आधार पर पिछड़े वर्गों की सूची तैयार की थी, परंतु बाद में इसे वापस लेकर आर्थिक मापदंड को पिछड़ेपन के निर्धारण हेतु अपनाया। दक्षिणी राज्यों यथा तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश ने ऐसे वर्गों के प्रति सदा उदार नीति का अनुसरण किया है। उन्होंने जातिगत आधार पर पिछड़े वर्गों की सूचियां तैयार की, परंतु इसके साथ परिवार की आय सीमा को जोड़ दिया। इन श्रेणियों के लिए छात्रवृत्तियों एवं स्कूलों यथा कॉलेजों में शिक्षण शुल्क से छूट के अतिरिक्त तकनीकी संस्थाओं में स्थान आरक्षित किए गए हैं। राज्य सेवाओं में भी उनके लिए रिक्त स्थानों का पर्याप्त प्रतिशत आरक्षित है। आंध्र प्रदेश में 25%, तमिलनाडु में 50%, कर्नाटक में 48%, केरल में 40%, बिहार में 20%, गुजरात में 3 एवं 4 के पदों पर 10% एवं श्रेणी 1 एवं 2 के पदों पर 5%, जम्मू एवं कश्मीर में 42%, पंजाब में 5%, उत्तर प्रदेश में 15%, हरियाणा में 10% तथा हिमाचल प्रदेश में 5%। कल्याण सेवाएं, वेलफेयर सर्विसेस। विभिन्न राज्य सरकारें कुछ एक सुविधाएं अन्य पिछड़े वर्गों को दे रही हैं, यथा शिक्षा को उन्नत करने हेतु निःशुल्क शिक्षा, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक परीक्षा एवं शिक्षण शुल्क से छूट, शैक्षिक संस्थाओं में सीट आरक्षण, साक्षरता कक्षाएं लगाना, पुस्तकें एवं वस्त्रों की निःशुल्क आपूर्ति, प्रवेश हेतु छूट, न्यूनतम अंक में छूट, अध्ययन भ्रमणों का आयोजन, छात्रवृत्तियां, छात्रावास सुविधाएं, कोचिंग केंद्रों का चलाना, चलते फिरते स्कूलों की स्थापना तथा कार्यशालाओं में निःशुल्क प्रशिक्षण। प्रथम तीन पंचवर्षीय योजनाओं में केंद्रीय सरकार ने 1.62 करोड़ रुपए प्रथम योजना, 5.02 करोड़ रुपए दूसरी योजना तक, 6.8 करोड़ रुपए तीसरी योजना, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु आवंटित किए थे तथा सभी स्कीमें शिक्षा के क्षेत्र में थी। तीसरी योजना के अंत तक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए केंद्रीय सेक्टर में 40 लाख रुपए की वार्षिक वित्तीय व्यवस्था की जाती थी। चतुर्थ योजना के स्कीम राज्य सेक्टर को अंतरित कर दी गई। पांचवी पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों का कुल परिव्यय 17.25 करोड़ रुपए था, जिसमें से 2/3 से अधिक शैक्षिक प्रोग्राम पर व्यय किया गया। आर्थिक विकास की स्कीमों जिन पर केवल मात्र 3 करोड़ रुपए व्यय किए गए, वित्तीय निगमों एवं कारीगरों को ऋण एवं अनुदान, कृषकों को सिंचाई, कुएं तथा भैंस एवं उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता सम्मिलित थी। इन सहायता कार्यों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के विशेष ग्रामीण विकास प्रोग्रामों, न्यूनतम आवश्यकता आपूर्ति प्रोग्राम, सूखा क्षेत्र प्रोग्राम, लघु कृषक विकास एजेंसी, सीमांत कृषक एवं कृषक श्रमिक परियोजना, काम के बदले भोजन प्रोग्राम, ग्रामीण रोजगार परियोजनाओं, इन उत्पादक प्रोग्राम, ग्रामीण बिजलीकरण प्रोग्राम, भूमिहीन व्यक्तियों के निर्माण हेतु भूमि की व्यवस्था, बंधुआ मजदूरी एवं ग्रामीण ऋण की समाप्ति आदि के माध्यम से भी लाभ प्राप्त हुए। पंचवर्षीय योजना में गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की दशा को सुधारने पर अधिक ध्यान दिया गया। पृष्ठ संख्या 403। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी कोई स्वयंसेवी संस्था नहीं है जो अनन्य रूप से पिछड़े वर्गों की सेवा करती हो। राज्य, स्थानीय एवं जाति स्तर पर वर्तमान स्वयंसेवी संगठनों को राज्य सरकारें सहायता देती हैं। भारत सरकार भारत सेवक समाज, जो महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों जनजातियों के अतिरिक्त कुछ अन्य पिछड़े वर्गों को भी सहायता देती हैं, भारतीय घुमंतु जन खानाबदोश सेवक संघ नई दिल्ली में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजातियों के कल्याण कार्य करती हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, जो उत्तर प्रदेश में कुछ एक पिछड़े क्षेत्रों में तराई, गढ़वाल एवं जोन सरबावर मातृत्व एवं बाल कल्याण सेवा चलाती हैं। रामकृष्ण आश्रम पुरी उड़ीसा, जो छात्रावास जहां अनुसूचित जातियों जनजातियों के अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी प्रवेश दिया जाता है, चलाती हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अब तक कोई योजना परिव्यय व्यवस्था नहीं की जाती। उनके कल्याण हेतु प्रोग्राम राज्य सरकारों, संघ क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा चलाए जाते हैं, जिसके लिए अति अल्प राशि की व्यवस्था होती है। उदाहरणतया कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर क्रमशः अपने वार्षिक बजट का केवल 2.4%, 0.27%, 0.45% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए स्कीमों पर व्यय करते हैं। मंडल आयोग, मंडल कमीशन। जनता सरकार ने 1978 में दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग श्री वीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त करके पुनः खलबली मचा दी। मंडल आयोग ने शैक्षिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की परिभाषा हेतु मापदंड को निर्धारित करना था तथा ऐसी पहचान की गई वर्गों की उन्नति के लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करनी थी। विशेष तौर पर आयोग ने इन वर्गों के लिए सार्वजनिक सेवाओं जहां उनका समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है में पद नियुक्तियों आरक्षित करने हेतु व्यवस्था किए जाने की वांछनीयता के प्रश्न का भी परीक्षण करना था। आयोग ने 11 सूचकों जिनको सामाजिक 4, आर्थिक 4 एवं शैक्षिक 3 में वर्गीकृत किया गया को सामाजिक शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान हेतु प्रयुक्त किया। यह इस परिकल्पना से मार्गदर्शित हुई कि सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन का सीधा संबंध कुछ एक जातियों की निम्न स्थिति से है। भारत की कुल जनसंख्या का 52% इस आयोग के निष्कर्ष अनुसार पिछड़े वर्गों से संबंधित है। यह अनुसूचित जातियों जनजातियों जो कुल जनसंख्या का 22.5% है से अलग हैं। मंडल आयोग की सिफारिशों को निम्न प्रकार से संक्षिप्त किया जा सकता है। 1, लोक सेवाओं में 27% अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए जाने चाहिए। यद्यपि वे कुल जनसंख्या का 52% है परंतु आरक्षण कोटा इस सीमा से अधिक नहीं हो सकता। ऐसा इस कारण है कि सर्वोच्च न्यायालय के अर्वाचीन निर्णय अनुसार आरक्षण कोटा संविधान की धारा 15(4) एवं 16 के अधीन 50% से अधिक नहीं हो सकता, क्योंकि इस समय अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुसार अनुपात बढ़ाकर 22.5% पूर्व ही आरक्षित है। पृष्ठ संख्या 404। 2, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु प्रोग्रामों को केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु दी जाती है। 3, राज्यों में क्रांतिकारी भूमि सुधार लाकर लघु भूपतियों को धनी कृषकों पर अपने गुजारे वास्ते परिश्रिता को समाप्त किया जाए। 4, अन्य पिछड़े वर्गों को लघु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। 5, विशेष शैक्षिक प्रोग्राम व्यावसायिक प्रशिक्षण पर बल देते हुए पिछड़े वर्गों के लिए आरंभ किए जाएं ताकि उन्हें तकनीकी एवं व्यावसायिक संस्थानों में विशेष कोचिंग दी जाए ताकि वे खुले कोटा के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगिता कर सकें। आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत की। संसद के दोनों में इस 30 अप्रैल 1982 को रखा गया। तभी से इसकी सिफारिशों को पूर्ण रूपेण बिना किसी अनन्य परीक्षण के स्वीकृत किए जाने की निरंतर एवं प्रभावयुक्त मांग चल रही है। परंतु कोई भी सरकार चाहे उसकी कितनी भी सहानुभूति हो, 1,000 जातियों के लिए अतिरिक्त 27% सेवाओं में आरक्षण को स्वीकार नहीं कर सकी। इसी कारण कांग्रेस सरकार ने इस रिपोर्ट को सचिवों की एक समिति को भेज दिया जिसमें अनेक असंगतियां एवं दुर्बलताएं पाई गई जिसका देश की सामाजिक संरचना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। अनेक मुख्यमंत्रियों ने भी पिछड़ेपन को पूर्णतया जातीय आधार पर निर्धारित करने के मापदंड के विरुद्ध अपने विचार रखे। उनका यह भी विचार था कि राज्यों में स्थितियों की विभिन्नता होने के कारण इस विषय पर किसी केंद्रीय स्कीम की आवश्यकता नहीं है तथा मामला राज्यों पर छोड़ दिया जाए। रिपोर्ट के क्रियान्वयन हेतु घोषणा, अनाउंसमेंट फॉर इम्प्लीमेशन ऑफ द रिपोर्ट। राष्ट्रीय मोर्चा ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में मंडल आयोग की रिपोर्ट को क्रियान्वित करने का वचन दिया, परंतु शासक दल के नेताओं ने इस बारे में एक समान विचार नहीं थे। जबकि श्री देवी लाल एवं चंद्रशेखर शैक्षिक संस्थाओं एवं सरकारी पदों पर आरक्षण हेतु आर्थिक मापदंड को भी सम्मिलित करना चाहते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव पूर्णतया जाति आधार के पक्ष में थे। प्रधानमंत्री श्री बीपी सिंह ने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से परामर्श किए बिना राजनीतिक कालोचितता श्री देवीलाल एवं उप प्रधानमंत्री पद से पदच्युत कर दिया था। 9 अगस्त 1990 को दिल्ली में आयोजित किसान सम्मेलन द्वारा अपने राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास को विफल करने के लिए के कारणों के अचानक मंडल रिपोर्ट की सरकार द्वारा स्वीकृत की घोषणा 7 अगस्त 1990 का कर दी। पृष्ठ संख्या 405। श्री वीपी सिंह ने इस गलत अनुमानित कदम से अपने वरिष्ठ सहयोगियों को धक्का लगा। भारतीय जनता पार्टी एवं साम्य दल ने इस अविचारित निर्णय भर्त्सना की तथा सरकारी तंत्र भी रुष्ट हुआ एवं उसके प्रति सहानुभूति रखने वाले घटकों, विज्ञानों, पत्रकारों, विद्यार्थियों एवं वकीलों को परेशानी की स्थिति में डाल दिया, जिन्होंने उनके त्याग पत्र की मांग की। श्री बसंत साठे एवं डॉक्टर करण सिंह ने जोरदार शब्दों में आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री श्री वीपी सिंह ने राष्ट्र की जातीय हथकंडा को डुबो दिया है। विद्यार्थी समुदाय जिस पर रिपोर्ट के क्रियान्वित किए जाने का गंभीर प्रभाव पड़ता था ने देश भर में जन आंदोलन आरंभ कर दिया तथा सरकारी प्रशासन तंत्र को पंगु बना दिया। विद्यार्थियों ने अपने क्रोध एवं रोष को विरोध रैलियों, हिंसा, पुलिस के साथ मुठभेड़ों, बसों के अपहरण एवं उन्हें आग लगा देने, निजी संपत्ति को नष्ट करने तथा आत्मदाह के माध्यम से प्रकट किया। विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक जनमत को प्रभावित किया एवं जिससे उन्हें अनेक व्यावसायिक समुदायों एवं संगठनों का समर्थन प्राप्त हुआ, जिन्होंने खुले रूप से वीपी सिंह के पश्चगामी पग की भर्त्सना की, जो हमारे समाज की एकता एवं सामाजिक संतुलन को अव्यवस्थित कर देगा। आरक्षण विरोधी आंदोलन नई दिल्ली, चंडीगढ़, कुरुक्षेत्र, जम्मू, जयपुर एवं उत्तरी भारत के अन्य नगरों में हिंसा की चरम सीमा तक पहुंच गया। अनेक विद्यार्थियों ने आत्मदाह किया तथा पर्याप्त संख्या में विद्यार्थी पुलिस क्रूरता एवं अंधाधुंध गोलियों चलाने से मृत्यु के शिकार हुए। इन भयानक घटनाओं से चारों ओर शोक की लहरें फैलीं तथा राजनीतिक नेताओं एवं संवेदनशील लोगों ने मुद्रण मीडिया के माध्यम से अपने दुखद एवं गहन आवाज को बुलंद किया। रिपोर्ट की समीक्षा। केंद्र ने राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार के सम्मुख विवादग्रस्त एवं अत्यधिक बदनाम मंडल रिपोर्ट की सिफारिशों को अचानक क्रियान्वित करने के पीछे कोर्ट युक्तिकरण कारण नहीं था। यह केवल भूतपूर्व लोकदल के बारे में बैंक, ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यम वर्गीय कृषि समूह, अहीरों, यादों, कुर्मियों एवं परंपरीय हस्तशिल्पियों को अपनी ओर मिलाने की राजनीतिक व्यवस्था थी। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में जनसंख्या का 40 से 50% भाग इन वर्गों का है। स्वयं मंडल आयोग की नियुक्ति एवं राजनीतिक प्रेरित कार्य का ज्ञान इसकी रिपोर्ट किसी वैज्ञानिक विश्लेषण एवं गहन अध्ययन के बिना अस्पष्ट पूर्वाग्रहों से प्रेरित थी। इस रिपोर्ट को आलोचना के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। नंबर एक, आयोग ने जातियों के आरक्षण की मांग करते हुए आगे आने के लिए आमंत्रित कर उनके प्रति अपने उत्साह को प्रभावित हुआ प्रतीत होता है। अन्यथा यह कैसे संभव है कि कालेकर योजना एवं 1978 के मध्य 1000 से अधिक अन्य जातियां पिछड़ी बन गई और इनकी संख्या 2700 से वृद्धि होकर 3700 से अधिक हो गई। इसके परिणाम स्वरूप मुसलमानों, जैनियों एवं बुद्धिस्टों ने भी अपनी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग कर दी। पृष्ठ संख्या 406। नंबर 2, मंडल आयोग संविधान का उल्लंघन करता है जिसमें जाति अथवा धर्म के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती के मामले में भेदभाव की मनाही की गई है। नंबर 3, मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की अधिकतम सीमा से आगे चला गया है। यदि जनसंख्या का 70% भाग पिछड़ा हुआ तथा अन्य जातियां भी स्वयं को पिछड़ा घोषित कराने की होड़ में हैं तो यह विशेष प्रतिनिधित्व का केवल उपहास है। यह सरल रहेगा कि अग्रिम जातियों की परिभाषा कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाए तथा शेष स्थान पिछड़े वर्गों के लिए छोड़ दिए जाए। नंबर 4, मंडल आयोग की सिफारिशों मुसलमानों, जैन अनुयायियों, ईसाइयों आदि को अलग प्रतिनिधित्व की मांग करने हेतु प्रेरित करती है जिससे समाज की एकता के स्थान पर विघटन आरंभ हो जाएगा। नंबर 5, आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के इस कथन की अवहेलना की है कि सामाजिक पिछड़ापन अधिकांश सीमा तक निर्धनता का परिणाम है। जाति एवं निर्धनता दोनों पिछड़ेपन से प्रासंगिक हैं, परंतु ना तो केवल निर्धनता और ना ही केवल जाति निर्णायक तत्व हो सकता है। उदाहरणतया जाति से कोई नाई जिससे अधिकतर हेयर कटिंग सैलून स्थापित किया हुआ है अथवा कोई धोबी जिसने आधुनिकतम लॉन्ड्री स्थापित कर रखी है कैसे पिछड़ा हुआ कहा जा सकता है। वास्तव में जमींदारी, जागीरदारी के उन्मूलन एवं भूमि सुधारों तथा स्वरोजगार हेतु उदार ऋणों के फलस्वरूप सामाजिक गतिशीलता में परिवर्तन आया है। यद्यपि यह परिवर्तन प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है, तदपि समाज के आगे लाने के स्थान पर पिछड़ेपन में निहित स्वार्थी की भावना को बढ़ावा देकर केवल कुछ हजार सरकारी नौकरियों को पाने की इच्छा से इसे पीछे ले जाना ठीक नहीं होगा। नंबर 7, मंडल आयोग की सिफारिशों का एक घातक परिणाम यह होगा कि 4000 जातियों के नेता राजनीतिक मैदान में उभर कर आएंगे जो अपनी जाति के हितों की पूर्ति करने के लिए उनका शोषण करेंगे एवं सभी उपलब्ध रियायतें एवं अपने समर्थकों को दिलवाएंगे। अक्टूबर 1981 में गृह मंत्रालय ने अल्पसंख्यक आयोग के मत को इस प्रश्न पर जानना चाहा कि क्या हिंदुओं तथा गैर हिंदुओं ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने के भिन्न भिन्न मापदंड भेदभाव के आधार पर गैर कानूनी है। आयोग का विचार था कि गैर हिंदुओं में, जिनमें धर्म के आधार पर कोई जातीय वर्गीकरण नहीं है, यह जाति के पिछड़ेपन का मापदंड नहीं बनाया जा सकता। मंडल आयोग की सिफारिशें अल्पसंख्यक आयोग को संवैधानिक तौर पर स्वीकार योग्य प्रतीत हुई क्योंकि इनमें पिछड़ेपन को दूर करने हेतु जो इस प्रकार के भेदभाव का स्वाभाविक लक्ष्यों होना चाहिए के साथ तार्किक संबंध नहीं बतलाया गया। मंडल आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के बालाजी केस जैसे विवादों में घोषित निर्णयों की भावना पर कोई ध्यान नहीं दिया जिनमें निर्धनता को सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ेपन का मूल कारण माना जाता है। आयोग की संपत्ति में पिछड़ेपन का आर्थिक मापदंड जाति के आधार पर हिंदुओं में भी अधिक न्यायिक होगा। पृष्ठ संख्या 407। एक प्रसिद्ध विज्ञान के शब्दों में मंडल आयोग रिपोर्ट आकस्मिकता जल्दी से तैयार किया गया प्रलेख है कि जिसमें सभी प्रकार की गलतियां हैं, अपनी सिफारिशों को तर्क एवं वस्तुनिष्ठता की रंग देने के लिए मंडल आयोग ने रिपोर्ट को अनुसंधान का आधार प्रदान करने का प्रयास किया, परंतु रिपोर्ट के सरसरी पठन ही यह दावा गलत सिद्ध हो जाता है। मंडल आयोग द्वारा प्रयुक्त जाति संबंधी आंकड़े 1951 की जनगणना रिपोर्ट पर आधारित है, जब से भारतीय दृष्टि में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन हुआ है, परंतु मंडल आयोग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हरियाणा में गुरनाम सिंह आयोग की पिछड़ी जातियों के बारे में सिफारिशें। गुरनाम सिंह कमीशन रिकमेंडेशन ऑन बैकवर्ड कास्ट्स इन हरियाणा। हरियाणा सरकार ने न्यायमूर्ति गुरनाम सिंह पैनल की नियुक्ति उन जातियों की पहचान करने के लिए ही की जिन्हें सरकारी सेवाओं में आरक्षण की सुविधा मिलनी चाहिए। विभिन्न जातियों एवं समुदायों के प्रतिनिधियों ने अपनी अपनी जातियों के लिए आरक्षण की मांग की। जाट प्रतिनिधित्व मंडल ने तर्क दिया कि ग्रामीण समाज में उनके साथ अब भी भेदभाव लिया जाता है, उच्च जाति वाले उनके साथ हुक्का नहीं पीते। सैनी नेताओं ने कहा कि सैनी सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक रूप से सर्वाधिक पिछड़े हुए हैं। ईसाइयों प्रतिनिधिमंडल का कथन था कि उन्हें भी पिछड़ी जातियों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाए, परंतु ब्राह्मणों के प्रतिनिधिमंडल ने जातिगत आधार पर आरक्षण का विरोध किया। इनका कहना था कि लाभ सभी जातियों की आर्थिक शैक्षिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर दिए जाने चाहिए। उन्होंने बतलाया कि स्वतंत्रता के समय से कुछ एक जातियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं हुआ है और एवं समान जाति आधारों पर विभक्त हो गया है। आयोग ने 63 समुदाय से प्रतिवेदन प्राप्त हुए जो स्वयं को आर्थिक वर्गों की सूची में सम्मिलित करना चाहते थे। हाल ही में पंजाब से हरियाणा में आवासीय व्यक्ति भी स्वयं को पिछड़ा घोषित कराना चाहते थे। हरियाणा मंत्रिमंडल ने 24 जनवरी 1991 को गुरनाम सिंह आयोग की सिफारिशों को संशोधनों सहित स्वीकार कर ली, जिससे हरियाणा की व्यावसायिक संस्थानों एवं सरकारी सेवाओं में आरक्षण सीमा 69% हो गई तथा 10 जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों में सम्मिलित किया गया। यह निर्णय 26 जनवरी 1991 से सभी नौकरियों के लिए लागू होना था। यह भी निर्णय लिया गया कि केंद्रीय सरकार को इन जातियों को हरियाणा से संबंधित मंडल आयोग की सूची में सम्मिलित करने की सिफारिश की जाए, क्योंकि राष्ट्रीय केंद्रीय सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व राज्य सेवाओं की तुलना में कम है और उन्हें केंद्रीय सेवाओं में भी आरक्षण का लाभ हो सके। मंत्रिमंडल ने राजपूतों को भी SBC श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया। अन्य नवजातियां थी जाट, जाट सिख, गुर्जर, सैनी, मियो, अहीर, रोडे, बिनशोई एवं त्यागी। पृष्ठ संख्या 408। वास्तव में आयोग की नियुक्ति राजनीतिक उद्देश्य से श्री देवीलाल उप प्रधानमंत्री के आदेश से की गई थी, जो आयोग की सिफारिशें स्वीकृत किए जाने से पूरा हो गया। आयोग उस समय नियुक्त किया गया जब श्री देवीलाल को उपमंत्री के पद से श्री VP सिंह द्वारा हटा दिया गया और मंडल विरोधी आंदोलन के शोरगुल में किसी ने भी हरियाणा के पितामह की चतुर्गति पर कोई ध्यान नहीं दिया। 69% आरक्षण में 5% आरक्षण अग्रिम वर्गों में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए होगा, जिसके लिए मापदंड भी निर्धारित किया गया। आयोग ने सुझाव दिया था कि जिन व्यक्तियों के पास 2 हेक्टेयर अथवा उससे कम शुष्क वर्षा पर आधारित भूमि है, जिनकी आय 15,000 रुपये प्रतिवर्ष है, उनको इस श्रेणी में सम्मिलित किया जाए। मंत्रिमंडल ने आय की सीमा को बढ़ाकर 20,000 कर दिया। मंत्रिमंडल आयोग की इस सिफारिश से भी सहमत नहीं था कि मियोज को अलग पिछड़ा वर्ग मानकर उनके लिए 2% आरक्षण दिया जाए। मंत्रिमंडल का विचार था कि इस प्रकार का संरक्षण संविधान के विरुद्ध होगा, क्योंकि आरक्षण श्रेणी दर नहीं दिया जा सकता, अतः उन्हें 9 अन्य वर्गों के साथ OBS में सम्मिलित कर लिया गया। इस समय 50% आरक्षण 20% अनुसूचित जातियों 10% पिछड़े वर्गों 17 भूतपूर्व सैनिकों तथा 3% बाधितों के लिए, श्रेणी 3 एवं 4 के पदों के लिए यह 38%, 28% अनुसूचित जाति, 10% पिछड़े वर्गों, 5% भूतपूर्व सैनिक, 3% बाधितों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के पदों के लिए है। नए निर्णय से 26% पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के पदों पर तथा 14% श्रेणी 3 एवं 4 के पदों पर आरक्षित हो जाएंगे। मंत्रिमंडल इस सिफारिश से भी सहमत नहीं हुआ था कि अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को भी अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की भांति छात्रवृत्तियां दी जाए। आरक्षण का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चों को उपलब्ध नहीं होगा। यदि माता पिता में से कोई सरकारी सेवा में श्रेणी 1 अथवा 2 के पद पर आसीन है अथवा किसी सार्वजनिक उपक्रम में समान पद पर है अथवा किसी प्राइवेट सर्विस में है एवं श्रेणी 2 के अधिकारी से कम वेतन नहीं पाता, यदि माता पिता में से कोई व्यवसायी डॉक्टर वकील चार्टर अकाउंटेंट आयकर कंसल्टेंट वित्त अथवा प्रबंध कंसल्टेंट दंत चिकित्सक अभियंता तथा वास्तुक है, यदि माता पिता में से कोई आयकर दाता विक्री करदाता है, यदि उसके माता पिता में से किसी अथवा दोनों के पास 8 हेक्टेयर वर्षा पर आधारित शुष्क भूमि अथवा इसके समकक्ष है। मंडल रिपोर्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती। मंडल रिपोर्ट चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। मंडल आयोग रिपोर्ट तथा केंद्रीय सरकार एवं सार्वजनिक उपक्रमों में 27% पद अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित करने के केंद्रीय सरकार के निर्णय की संवैधानिक वैधता को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई। न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत तर्क है। मंडल आयोग रिपोर्ट को पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की कोई संवैधानिक अनुशासित नहीं है। आयोग ने ऐसा सोचने में त्रुटि की कि संविधान की धारा 540 के अधीन पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षण की सिफारिश करना इसका कर्तव्य था। मंडल रिपोर्ट ने 3,743 पिछड़े जातियों को वरीयता प्रदान करके तथा अग्रिम जातियों को दूसरी श्रेणी के नागरिक बनाकर वस्तुतः संविधान का प्रलेख कर दिया गया। रिपोर्ट द्वारा जातिवाद को पुनर्जीवित कर दिया गया जिसे संविधान ने समाप्त करने का सशक्त प्रयत्न किया तथा जातिवाद को पुनः जीवित कर दिया जिसे संविधान ने समाप्त करने का सशक्त प्रयत्न किया था। आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कुछ एक नियमों की अवहेलना की है जिसमें न्यायालय ने कहा था कि आरक्षण करते समय प्रशासन की दक्षता को ध्यान में रखा जाना चाहिए तथा अनुसूचित अत्यधिक अथवा अपव्ययी आरक्षण संविधान के साथ कपट होगा। संविधान में सरकारी पदों के आरक्षण के बारे में विचार करने के लिए किसी आयोग के नियुक्त किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। केवल जाति पर आधारित किसी वर्ग को पिछड़े वर्ग की श्रेणी में रखना असंवैधानिक है। आयोग ने केवल जाति को ही आरक्षण का आधार बनाया है। रिपोर्ट के क्रियान्वयन से देश में जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा तथा स्वतंत्रता प्राप्ति से अब तक जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए प्रयास सार्थक हो जाएंगे। रिपोर्ट संविधान की आधारिक संरचना के विरुद्ध है क्योंकि यह राष्ट्र की 2 श्रेणियों अग्रिम एवं पिछड़े में विभक्त कर एवं राज एवं जातिवाद को पुनर्जीवित कर अंतर जातीय संघर्षों एवं विघटक शक्तियों को जन्म देता है तथा पिछड़ेपन को निहित स्वार्थ बनाता है। आयोग ने यह जानने का प्रयास नहीं किया कि क्या विभिन्न राज्यों में आरक्षण के प्रशासन की दक्षता को प्रभावित हुई है एवं सत्ता की बागडोर योग्य व्यक्तियों के हाथों से निकल गया है तथा साधारण व्यक्तियों के पास चली गई है। मंडल आयोग की सिफारिशों इस आधार पर भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि यह 1891 एवं 1931 के पुराने एवं निरर्थक आंकड़ों पर आधारित है जो भारत में जातियों की जनसंख्या एवं जातियों के वर्तमान वितरण की पहचान करने हेतु अप्रासंगिक हैं। यह सरकार का दायित्व है कि वह प्रमाणित करे कि संविधान की धारा 16(1) में उल्लिखित समानता के सिद्धांत से हटकर किसी व्यवस्था को करने की राष्ट्रीय आवश्यकता है। धारा 16(4) के अधीन पिछड़े वर्गों की पहचान करने में सही मापदंड प्रयोग किए जाने चाहिए। प्रत्येक पिछड़ी जाति सुस्पष्ट एवं विश्वसनीय आंकड़ों वे आधार पर पिछड़ी प्रमाणित होती हैं। मंडल आयोग ने आर्थिक मापदंड को एक अलग शीर्ष बनाया एवं इसे सामाजिक पिछड़ेपन का मापदंड न बनकर तथा चार आर्थिक मापदंडों में प्रत्येक का एक अंक देकर जबकि सामाजिक पिछड़ेपन के मापदंड में प्रत्येक को 3 अंक दिए गए इसके महत्व को मूल्यहीन बना दिया गया। मंडल आयोग द्वारा निर्धारित आर्थिक पिछड़ेपन के चारों मापदंडों की भी कोई प्रासंगिकता नहीं थी क्योंकि घरेलू आय अथवा घरेलू उपयोग व्यय के घटक को सामाजिक शैक्षिक सर्वेक्षण में सम्मिलित नहीं किया गया। पुनः किसी जाति को पिछड़ी जाति उसी अवस्था में कहा जा सकता है जब संपूर्ण या अधिकांश भाग पिछड़ा हुआ हो। केवल 3 से 5% तक भाग पिछड़ा होने की स्थिति में जाति की स्थिति का दावा प्रमाणित नहीं होता। इसके अतिरिक्त मंडल रिपोर्ट में सम्मिलित अनेक जातियाँ अवस्थित हैं। जैसा कि भारतीय मानव विज्ञान सर्वे ने 120 ग्रंथों के संग्रह भारत के लोग में वर्णित है, 1100 जातियाँ सूची में गलत सम्मिलित की गई हैं क्योंकि यह वास्तव में जातियों में केवल मात्र पर्याय है। उड़ीसा में 224 जातियाँ हैं जिन्हें सूची में सम्मिलित किया गया है क्योंकि इस राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों की सूची शून्य दिखलाई है। अतएव मंडल रिपोर्ट को तिरस्कृत कर देना चाहिए तथा इसे क्रियान्वित करने की घोषणा को असंवैधानिक घोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इसका ना कोई आधार है ना कोई प्राधिकार। संविधान निर्माताओं ने जाति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने वर्ण का प्रयोग किया है। वर्ग एवं जाति अलग अलग अवधारणाएं हैं। यदि जाति शब्द का प्रयोग भी किया गया है तो ऐसा उसे ना करने के लिए कहा गया तथा इस बात पर बल देने के लिए कहा गया कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। संवैधानिक निर्माताओं ने यह भी आशा की गई है कि आरक्षण केवल अस्थाई एवं थोड़े समय के लिए होगा। संविधान निर्माताओं ने तत्संबंधी संवैधानिक व्यवस्थाओं की व्याख्या जब अवसर आए सर्वोच्च न्यायालय पर छोड़ दी।